नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत शीर्ष पर। प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण और नारिन प्रणव वनिता सुरेश ने कांस्य पदक जीते। प्रियानुज भट्टाचार्य ने जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीता। थॉमस और उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से डेनमार्क में। आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु भारत का नेतृत्व करेंगे। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में आज भारतीय युवा निशानेबाजों ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने 354.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग में नारायण प्रणव वनिता सुरेश ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत 2 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। बेहतरीन प्रदर्शन है दोनों खिलाड़ियों का। और अभी 16 से 26 जून के बीच जर्मनी में भी जो है विश्व चैंपियनशिप होने वाली है जूनियर, और शॉटगन टूर्नामेंट भी होना है विश्व कप 12 से 20 सितंबर के बीच, तो उसके मद्देनजर भी अच्छी टूर्नामेंट है इनके लिए।
देखिए, ये जूनियर लेवल पे तो और बाकी सीनियर लेवल पर भी मैं कहूँगा, लेकिन जूनियर लेवल पे भारत के पास एक से एक बढ़कर निशानेबाज हैं। और अभी नहीं, काफी सालों से बहुत अच्छे अच्छे निशानेबाज आते रहे हैं
जी।
और आपने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन की बात की, उसमें कई भारतीय बहुत ही अच्छा करते हैं सीनियर लेवल पर भी। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह भारत के ही हैं, जिनके नाम पुरुषों का रिकॉर्ड है 362 अंक हासिल करके। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि किस इवेंट में आप कितना स्कोर करते हैं
जी।
तो ये जो स्कोर बनाया इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है, वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। और इस लेवल पे भारत जैसे लीड कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है। इस दो बातें हैं कि एक तो आप लीड कर रहे हैं, भारतीय टीम लीड कर रही है
जी।
दूसरा कि ये दर्शाता है कि जो हमारे जो जूनियर्स हैं, जो आगे जाके सीनियर लेवल पे भी भारत के लिए खेलेंगे और ओलंपिक्स पर सबकी निगाहें होती है, एशियन गेम्स पे होती है कि वहां पे क्या कुछ करते हैं, तो ये रिजल्ट बताता है कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो भी आगे बढ़ने को तैयार है और उसी लेवल का प्रदर्शन कर रही है जिस लेवल पर हम वर्ल्ड लेवल ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप या फिर एशियन गेम्स में मेडल जीत सकते हैं
जी। और उम्मीद करें कि इस प्रतियोगिता के साथ साथ आने वाले प्रतियोगिताओं में भी जो खिलाड़ी हैं भारत का परचम लहराते रहें।
बिल्कुल।
बात करते हैं टेबल टेनिस पर। असम के प्रियानुज भट्टाचार्य ने पीबी अभिनंद को हराकर जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में आज प्रियानुज ने अंडर 19 लड़कों का सिंगल्स में खिताब जीता है। वहीं अभिनंद और MR बालमुरुगन ने अपने ही राज्य के SK मेहान और उमेश कुमार को 3-1 से हराकर डबल्स का खिताब जीता। वहीं अंडर 17 लड़कों के सिंगल्स वर्ग में जम्मू कश्मीर के ऋत्विक गुप्ता ने फाइनल अपने नाम किया। अंडर 17 लड़कों के डबल्स में साहिल रावत और धैर्य रावत ने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। बात कर लेते हैं बैडमिंटन पर। BWF थॉमस कप और उबर कप बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी कल से अपना दमखम दिखाएंगे। थॉमस कप में कल भारत कनाडा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। 27 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया और 29 अप्रैल को चीन के खिलाफ खेलेगा। वहीं उबर कप में भारतीय टीम कल डेनमार्क से मुकाबला करेगी। भारत 25 अप्रैल को यूक्रेन और 27 अप्रैल को चीन से भिड़ेगा। ये प्रतियोगिता 3 मई तक डेनमार्क में आयोजित की जाएगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
थॉमस कप में भारत का नेतृत्व उभरते सितारे आयुष कर रहे हैं। आयुष हाल ही में एशिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 वर्ष बाद पहले भारतीय उपविजेता बने थे। वहीं लक्ष्य सेन ने भी हाल ही में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया था। सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी इस प्रतियोगिता में दमखम दिखाती नजर आएगी। हरिहरन, अमसा करुणन, MR अर्जुन और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। वहीं उबर कप में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम टीम को यूरोपीय टीम चैंपियनशिप के उपविजेता डेनमार्क, कांस्य पदक विजेता यूक्रेन और 16 बार के चैंपियन चीन के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली चोटिल होने के कारण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। इनकी जगह प्रिया कोंजिंगबम और श्रुति मिश्रा महिला डबल्स की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं विश्व जूनियर चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता तन्वी शर्मा, थाईलैंड ओपन सुपर सीरीज की विजेता देविका सिहाग, 3 सुपर 100 खिताब और 2 इंटरनेशनल चैलेंज खिताब जीतने वाली उन्नति हुडा और ईशा रानी बरुआ भी चुनौती पेश करेंगी। वहीं तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में खेलती नजर आएंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
हाल के टूर्नामेंट्स में चाहे एशिया चैंपियनशिप की बात करें या फिर ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियनशिप जो हुआ उसमें लक्ष्य की बात कर ले या फिर आयुष के अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं।
देखिए ये जो टूर्नामेंट्स हैं ये बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं, बहुत पुराने हैं
जी,
और इसमें एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस से आप कुछ नहीं कर सकते। ये पूरी टीम अच्छा करेगी तभी कुछ हो सकता है। और भारत अगर इतिहास देखें तो महिलाओं में जो उबेर कप होता है उसमें 2014 और 16 में भारत ने बेस्ट किया था, क्योंकि तब साइना थी, तब सिंधु थी और ये पीक पर थी
जी, कांस्य पदक जीता था।
इसके अलावा आप देखें तो थॉमस कप में 2022 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, किसको, इंडोनेशिया को हराते हुए। और इंडोनेशिया ऐसी टीम है जिसने चाइना और इंडोनेशिया का दबदबा रहा है और इन्होंने ही ज्यादा वहां पे खिताब जीते हैं
जी।
ओवरऑल अगर देखें तो टीम अच्छी नजर आ रही है भारत की, लेकिन अगर थॉमस कप में देखें तो भारत के साथ चाइना भी है
जी,
और चाइना बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी है और उससे उबरना भारत के लिए आसान नहीं होगा। इसी तरह अगर महिलाओं में भी देखें तो वहां भी चाइना और डेनमार्क दोनों से अच्छी टक्कर मिलने की उम्मीद है। तो मेरा ये कहना है कि फॉर्म में कुछ खिलाड़ी दिख रहे हैं, लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो वहां पे एचएस प्रणॉय के बारे में हम नहीं कह सकते कि हाल फिलहाल जिस तरह से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा नहीं किया है जिससे हम बहुत वो करें। इसके अलावा लक्ष्य और आयुष ने अच्छा किया, आयुष से ज्यादा उम्मीदें हैं। लक्ष्य जो है उनकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं रही है
जी।
और जहां तक डबल्स का सवाल है, सात्विक और चिराग कई टूर्नामेंट से हटे क्योंकि उनकी फिटनेस किसी न किसी की सही नहीं चल रही थी
जी।
अब ये देखना होगा कि किस तरह से वो अपनी फिटनेस बरकरार रखते हुए पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं। तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में रहें और ग्रुप स्टेज में कम से कम चाइना को किस तरह से वो खेलते हैं वो उस पर ज्यादा निगाहें होगी।
जैसे आपने सात्विक और चिराग की जोड़ी की बात की, वैसे ही उबर कप में जो पीवी सिंधु है कुछ टूर्नामेंट में वो भी खेल नहीं सकी थी और बहुत टाइम से उन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता नहीं है, तो उनके लिए भी ये कितना अहम हो जाता है टूर्नामेंट। प्लस जो सात्विक चिराग की जो जोड़ी है पुरुष डबल्स में, उनसे उम्मीदें सारे टूर्नामेंट में होती है लेकिन कुछ समय से वो ना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे और ना उस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे।
वही है, देखिए अगर अलग अलग आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि पुरुषों में लक्ष्य सेन है, आयुष शेट्टी है भारत के लिए
जी।
अच्छा, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। इस तरह अगर डबल्स में हमारी टॉप जोड़ी है और किस समय वर्ल्ड की टॉप जोड़ी थी
जी।
लेकिन वही है, फिटनेस का इश्यू है, वापसी करेंगे, कैसा खेलते हैं वो देखने वाली बात होगी। और महिलाओं में देखिए, अगर सिंधु की बात आपने बिल्कुल सही कही कि क्योंकि हाल फिलहाल वो कुछ ऐसा जीत कर नहीं आई है जिससे कहा जाए कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली कहें कि भारत बहुत ही अच्छा करेगा
जी।
उन्नति हुडा है, तन्वी शर्मा है, ये सब टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उभरती खिलाड़ी हैं, बट उस लेवल पर परफॉर्म करना कैसा करती है वो भी देखने वाली बात होगी। और डबल्स में भारतीय जो जोड़ी थी गायत्री और त्रिशा, वहां पर वो चोटिल हो गई और वो बाहर हो गई, उनसे कहीं ज्यादा उम्मीदें थी। अब देखना है कि जो दूसरी जोड़ी भारत की तनिषा क्रिस्टो उतर रही है और दूसरी जो जोड़ियां हैं वो कैसा करती है।
23 वर्षीय इंडो ऑस्ट्रेलियाई धावक ओम सतीजा आज नई दिल्ली पहुंचे। ओम 5000 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सतीजा ने बताया कि इस दौड़ का उद्देश्य कोलकाता स्थित उदयन फाउंडेशन से जुड़े बच्चों, विशेष रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित बच्चों के लिए जागरूकता और समर्थन जुटाना है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को भी बढ़ावा देना है।
For the last 88 days, been running from Kanyakumari all the way to Kashmir. This morning, I completed 4,000 kilometers and have just arrived at India Gate. I am running this entire distance to help support a wonderful cause for young children at Udayan, Kolkata, from leprosy-affected backgrounds, and give them an education and basically help break a lot of stigma that they face in society. You know, leprosy is something no one talks about. It's a very curable disease, but so many young children, especially, live with stigma and they're denied a lot of opportunities in society. So I'm here to be that voice for them.
उन्होंने 26 जनवरी को कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की थी और उनका लक्ष्य मई के मध्य तक जम्मू कश्मीर में दौड़ पूरी करना है।
So far I've crossed about 8 or 9 states, right from Tamil Nadu to Andhra Pradesh, up to Orissa, West Bengal, inland, Bihar, Jharkhand, UP, now arriving Delhi.
बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इससे पहले मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में मुंबई 7वें और चेन्नई 8वें स्थान पर है। पंजाब पहले और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अच्छा स्टार्ट मिल गया था चेन्नई को, हालांकि मुंबई ने भी कमबैक किया है। संजू सैमसन जो लगातार अच्छी फॉर्म में है, 59 रन बनाकर खेल रहे और उनका साथ देने के लिए कार्तिक शर्मा क्रीज पर बने हुए हैं।
देखिए अभी की जो स्थिति है, अगर संजू वहां बने रहते हैं
जी,
कार्तिक शर्मा से भी बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि उन पर अच्छा दांव लगाया था चेन्नई ने
जी।
और एक 19 साल के युवा बैटर है, काफी हार्ड हिटिंग उसके लिए जाने जाते हैं कार्तिक शर्मा। इनका स्ट्राइक रेट वगैरह बहुत ही अच्छा है
जी।
T20 में मैं देख रहा था 160 के आसपास है
जी।
तो अगर ये भी परफॉर्म करते हैं, इनके लिए एक मौका है
जी।
तो 200 का टारगेट अभी की स्थिति में मुझे दिख रहा है, बशर्ते कि संजू वहां रुके रहे और कार्तिक भी वहां पर बैटिंग करते रहे। बाकी आप देखें तो बहुत ऐसा नहीं है कि जेमी ऑबर्टन है या नूर अहमद है, अंशुल कंबोज है, ये सब बॉलर आ जाएंगे
जी।
लेकिन जो लास्ट अगर बैटिंग की जोड़ी कहें तो यही दोनों है। तो अगर 200 का स्कोर ये बनाते हैं तो मुंबई पे प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि मुंबई की टीम अगर आप देखें तो पूरा टूर्नामेंट ऐसा एक तिलक वर्मा ने जो पिछले मैच में अच्छा खेला था, इसके अलावा आप बहुत ज्यादा भरोसा, बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। क्विंटन डिकॉक भी वहां है, नमन धीर भी है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक है और रदरफोर्ड तिलक वर्मा है, ये सारे अच्छे हैं। बट एक तिलक को छोड़ दें जिन्होंने बनाया था, या नमन धीर को छोड़ दें, या क्विंटन ने भी एक मैच खेला था, वो निरंतरता नहीं है कि हर मैच में वो अच्छा कर रहे हो और दो बल्लेबाज उनके खड़े हो जाएंगे तो 200 प्लस बना सकते हैं। बट वही कंसिस्टेंसी वाला इशू है, 200 अभी की स्थिति में दिख रहा है और एक 200 बनने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही फाइटिंग मैच होगा और मुंबई भी की टीम भी होड़ में रहेगी।
वहीं दो स्टार जो लेजेंडरी प्लेयर हैं, रोहित शर्मा की बात कर लिया, महेंद्र सिंह धोनी है, सबकी निगाहें थी कि आज का मुकाबला दोनों ही खेलेंगे, तो उनके नहीं होने से एक तो जो कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है और उसके अलावा भी जो मेंटल बैरियर होता है, कितना फर्क पड़ता है दोनों खिलाड़ी का मैदान में नहीं होने से?
देखिए ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब आज की स्थिति में वो नहीं है धोनी तो बहुत टीम को बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है
जी।
क्योंकि ठीक है करिश्माई खिलाड़ी हैं और कप्तान अच्छे रहे हैं, उनके सुझाव मिलते रहते हैं अगर वो मैदान में है तो अब यही था कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे, बीच में वो बैटिंग करने आ सकते हैं। तो वो अगर नहीं भी होते हैं, अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कोई फर्क पड़ रहा। और रोहित शर्मा भी बहुत ही अच्छे लय में नहीं थे, इस वजह से नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं है तो बहुत फर्क पड़ रहा है
जी। वहीं कल खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हराया। बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट पर भी। महिला क्रिकेट में कल तीसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 विकेट से हराया। श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने 3-0 की बढ़त बना ली है। और श्रोताओं आप चलते चलते आपको बता दें कि चेन्नई ने 14 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। संजीव जी हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
नमस्कार।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।